अध्याय 8 शाक्त धर्म। देवी की सृष्टि निर्मात्री एवं शक्ति पुंज मानकर आराधना शाक्त पूजा कहलाती है। शक्ति का तात्पर्य देवी से है तथा किसी देव को ऊर्जा प्रदान करने वाली शक्ति से है। देवी पूजा का प्रारंभ पाषाण कालीन संस्कृति में विकसित हुआ। वीडी गार्डन चाइल्ड के अनुसार सांस्कृतिक विकास के प्रारंभ में कृषि, मृत्भांड, पशुपालन आदि का विकास स्त्रियों के द्वारा ही हुआ। इस कारण इसे अभूतपूर्व शक्ति की स्वामिनी माना गया है। उसके योगदान के कारण ही प्रारंभिक समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था तथा मातृदेवी सबसे प्रचलित पूजा थी। शक्ति की परंपरा सभी प्रारंभिक सभ्यताओं में प्राप्त होती है। भारत में इलाहाबाद मिर्जापुर के बेलन घाटी से पूरा पाषाण कालीन मातृदेवी की हड्डी की मूर्ति मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की पूजा सबसे अधिक प्रचलित थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता में मातृदेवी की पूजा सबसे अधिक प्रचलित थी और यहाँ से अनेक स्थानों में मातृदेवी की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। इनके स्वरूप को देखकर उन्हें मुख्यतः प्रजनन शक्ति से संबंधित माना गया है। भारतीय महाद्वीप में यह आर्यों के पहले ही प्रचलित हो चुकी थी। ऋग्वेद में देवी पूजा को महत्व नहीं दिया गया है तथा उनके लिए कोई सोमयज्ञ निर्धारित नहीं है। ऋग्वेद में पौराणिक देवियों दुर्गा, काली, अंबिका आदि का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। ऋग्वेद में वर्णित देवियों में उषा, ईड़ा, सरस्वती, अदिति, पृथ्वी, राका आदि प्रमुख हैं। ऋग्वेद में उषा का 20 सूक्त में वर्णन है तथा अन्य देवों के साथ इसे 300 बार वर्णित किया गया है। उषा सृजक, रक्षक, दुष्ट संहारक आदि स्वरूप में है, लेकिन यह केवल प्राकृतिक शक्ति के रूप में वर्णित है। इसे मानवीय स्वरूप में नहीं प्रदान किया गया है। उषा को सोमयज्ञ का कोई भाग समर्पित नहीं किया जाता है तथा इंद्र के द्वारा उषा के रूपों का वर्णन है। डीडी कौसंबी ने इन्हें तथ्यों के आधार पर उषा को एक अवैदिक देवी माना है। ऋग्वेद में अदिति सर्वशक्तिमान मातृदेवी की तरह वर्णित है। वह माता पिता एवं पुत्र के रूप में वर्णित है। जो कुछ जन्मा है अथवा जन्मेगा वह अदिति है। मैक्स मूलर के अनुसार अदिति अनंत को वर्णित करने वाली प्रथम देवी है। पृथ्वी का वर्णन आकाश एवं धौ के साथ है। उसे संयुक्त रूप से धावा पृथ्वी कहा गया है। पृथ्वी का वर्णन ऋग्वेद के केवल एक सूक्त में है, परंतु अथर्ववेद में वह महान देवी है जो सृजन, पोषण एवं संहार की शक्तियों से युक्त है। ऋग्वेद में लगभग 21 नदियों का वर्णन है। सरस्वती प्रथम नदी है जिसे देवी के रूप में स्वीकारा गया है। उसे इंद्र, पूषण, मरुत, अश्विन तथा अन्य देवताओं के साथ संबंधित किया गया है। ब्राह्मण साहित्य में वह वाक देवी कहलाई तथा पौराणिक ग्रंथों में बुद्धि की देवी तथा ब्रह्मा की पत्नी मानी गई। सरस्वती, ईला तथा भारती के साथ मिलकर तो देवी का रूप बनाती हैं। वैदिक देवियों में आपा का स्थान प्रमुख है। वह ऋग्वेद के 4 सूक्तों में वर्णित है। अपा को अग्नि की माता एवं जल देवी माना गया है। ऋग्वेद में वर्णित पूर्व मध्य आधिक्य की देवी है तथा 7 स्थानों पर वर्णित है। पूर्व मध्य के साथ पौरंदी को भी संबंधित माना गया है। धीषाण ऋग्वेद के 12 स्थानों पर वर्णित है तथा ईड़ा को पोषण की देवी माना गया है। राका को भी आधिक्य की देवी माना गया है तथा यह ऋग्वेद में 2 बार वर्णित है। ऋग्वेद के 2 सूक्तों में वर्णित सिनिवाली देवी की बहन मानी गई है तथा पुत्र प्राप्ति हेतु पूजी जाती थी। गुंगू का केवल नाम ही वर्णित है। इसके पश्चात मरुत की माता पृथ्वी, अन्य देवी सीता, त्वाष्ट की पुत्री सरण्यु, सूर्यपुत्री सूर्या, वन माता आरणी, लक्ष्मी, श्री, श्राद्ध जो आदर की देवी है। वनस्पति की देवी औषधि अप्या, योषा, सरामा, गंधर्वा, अलक्ष्मी, असुनीति, निष्ट्रग्र आदि देवियां भी ऋग्वेद में वर्णित हैं। ऋग्वेद में 12 बार वर्णित शक्ति उत्पादकता का द्योतक है। ऋग्वेद के देवी सूक्त तथा रात्रि सूक्तों में वाक का वर्णन शक्ति के रूप में हुआ है। ऋग्वेद की देवी सूक्त में देवताओं मनुष्यों की ऊर्जा का स्रोत देवी को स्वीकारा गया है। देवी सूक्त से ही शक्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। यह अभिरणी की पुत्री वाक को वाणी की देवी माना गया है। ऋग्वेद में रात्रि सूक्त में भी देवी को इंद्र की माता माना गया है जो शेर, बाघ, अग्नि, ब्राह्मण, सूर्य, हाथी, स्वर्ण, जल, रथ आदि में निवास करती हैं। अंबिका, उमा, दुर्गा, काली आदि देवियां उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवियों के रूप में स्थापित हुई। अंबिका का प्रथम विवरण यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में है। यहाँ इसे रुद्र की बहन कहा गया है। तैत्री ब्राह्मण में यह अंबिका रुद्र की बहन है, लेकिन तैत्री आरणक में रुद्र को अंबिका का पति कहा गया है। केन उपनिषद में देवी विशेषतः उमा को पार्वती तथा उमा को उमा हेमवती कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में दुर्गा का संबंध यज्ञ अग्नि से जोड़ा गया है। उमा तथा दुर्गा का संबंध अग्नि से जोड़ा गया तथा दुर्गा अग्नि की पुत्री है। मुंडक उपनिषद में अग्नि की 7 जिह्वाएं काली, कराली, मोंजव, सुलोहित, सुधूर्मवर्ण, सुफलंगिनी तथा विश्वरुचि है। तैत्तिरीय आरण्यक में दुर्गा, विरोचड़ी, कात्यायनी और कन्याकुमारी को अग्नि से संबंधित किया गया है। श्वेतासवेतर उपनिषद में शक्ति का सीधा वर्णन है। पौराणिक साहित्य में देवी को भवानी नाम से संबोधित किया गया है। भवानी भव की पत्नी एवं सौम्य स्वरूप की देवी हैं। इसी तरह रुद्राणी रुद्र शिव की पत्नी हैं। महाकाव्य में उत्तर वैदिक कालीन देवियों का महात्म वर्णित किया गया है। अदिति को कश्यप की पत्नी और आदित्यों की माता स्वीकारा गया है। हरिवंश में उसे दुर्गा पृथ्वी एवं देवकी रूप में पूजित किया गया है। पृथ्वी को पृथु की पुत्री कहा गया है तथा वह अपने पुत्रों को वैसे ही पोषित करती है जैसे गाय अपने बछड़े को। यहाँ वह कश्यप की एक अन्य पत्नी दीति जो दानव की माता है से देशपूर्ण व्यवहार भी रखती है। पृथ्वी धन की देवी वाली है। पृथ्वी धन को देने वाली है तथा मनुष्यों को जीवन हेतु अनाज की प्राप्ति कराती है। उसे विष्णु संबंधित करके वैष्णवी भी कहा गया है। महाभारत में उषा को निम्न स्थान मिला है। उसे बाढ़ की पुत्री एवं अनिरुद्ध की पत्नी माना गया है। महाकाव्य में उत्तर वैदिक देवियों में श्री एवं लक्ष्मी को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ ये एक दूसरे से संबंधित मानी गई हैं। महाभारत में पाप की देवी तथा लक्ष्मी की विरोधी अलक्ष्मी का भी वर्णन है। इनके अतिरिक्त गौण स्थान पाने वाली देवियों कीर्ति धर्त मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रिया बुद्धि लज्जा मति आदि का भी वर्णन महाभारत में प्राप्त होता है। इन्हें दक्ष की पुत्री तथा धर्म की पत्नी भी वर्णित किया गया है। महाकाव्य में वाक एवं सरस्वती को एक माना गया है तथा वह प्रजापति की पुत्री हैं। महाभारत में सरस्वती को प्रजापति की पत्नी नहीं माना गया है। संभवतः यह संकल्पना बाद में विकसित हुई। महाभारत में गायत्री या सावित्री को सूर्य की पुत्री वेदों की माता एवं ब्रह्मा की पुत्री माना गया है तथा उसकी तुलना उमा या पार्वती से की गई है। तीन गौण स्थान वाली वैदिक देवियों राकाशिनी वाली तक कुह चंद्रमा को विभिन्न चरण माने गए हैं। अन्य प्रमुख देवियों में सची पेलोमी या इंद्राणी को इंद्र की पत्नी रुद्राणी को रुद्र की पत्नी देवी को वरुण की पत्नी और निरुत्ति को मृत्यु की देवी के रूप में व्याख्यित किया गया है। वैदिक अन्य देवी सीता रामायण में राम की पत्नी आदर्श नारी के रूप में विकसित हुई लेकिन उनका जन्म पृथ्वी के गर्भ से माना गया है। उसे अन्नपूर्णा या ध्यान मालिनी भी कहा गया है। हरिवंश में कृषकों के द्वारा किए जाने सीता को समर्पित सीता यज्ञ का वर्णन है। अंबिका अपर्णा भद्रकाली दुर्गा गौरी कौशिकी साकंबरी उमा जैसी देवियां शैव परंपरा से संबंधित थी। उमा या पार्वती को शिव की पत्नी एवं हिमालय की पुत्री कहा गया है। उमा को गिरिपुत्री गिरजापुत्री शैलजापुत्री नागराजपुत्री पर्वतराज कन्या आदि उपाधियों में विभूषित किया गया है। ये उपाधियां हिमालय से उनके संबंध का प्रतीक है। महाभारत के किरातार्जुनीयम संस्करण में उमा को उत्तर दिशा की स्वामिनी एक किरात स्त्री का वेश रखने वाली स्कंद को जन्म देने वाली जयदत्त को कृत करने वाली कहा गया है। अदिति हीरी स्वाहा सरस्वती आदि देवियों के नाथ देवियों के साथ भी वर्णित है। दक्षयक तथा शिव उमा संवाद में भी पार्वती की महिमा का व्याख्यान है। रामायण में उमा पार्वती को गंगा की छोटी बहन तथा मेड़ एवं हिमालय के पुत्री कहा गया है। उमा को दानवों को वर देने वाली भी कहा गया है। देवी महात्म्य का विवरण पुराणों में प्राप्त होता है। मार्कंडेय पुराण में देवी महात्म्य या सप्तशती का वर्णन है परंतु अब वह गीता की तरह ही एक स्वतंत्र साहित्य है। गीता की भांति ही देवी महात्म्य में 700 सूक्त है। महात्म्य में देवी शक्ति का चरमोत्कर्ष प्राप्त किया जा सकता है। महात्म्य में आर्य एवं अनार्य देवियों का समन्वय है तथा इसमें 108 शक्ति पीठों का वर्णन है। देवी महात्म्य में देवी चरित्र को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूर्व चरित्र, इसमें शक्ति को दानवों का संहार करते हुए दिखाया गया है। देवी ने इस रूप में मधुकैटभ जैसे दानवों का वध किया। दूसरा मध्यम चरित्र, इसमें देवी का महिषासुर का वध वर्णित है। तीसरा उत्तर चरित्र, इस भाग में शुंभ निशुंभ चंड मुंड तथा रक्त बीज के वध का वर्णन है। महात्म्य सूरत नामक राजा की कथा से प्रारंभ होता है जो ऋषि मेधा के आश्रम में निवास कर रहा था। सूरत एक प्रतापी एवं दानी राजा था परंतु विपरीत समय के कारण वह अपने मंत्रियों एवं परिजनों के द्वारा निष्कासित कर दिया गया तथा उसकी संपत्ति लूट ली गई। आश्रम के समीप ही सूरत की भेंट समाधि नामक दानशील वैश्य से हुई। वह भी अपने परिजनों के द्वारा शोषित एवं निष्कासित था। दोनों मेधा ऋषि के आश्रम में गए तथा अपने हुए अत्याचार का वर्णन किया तथा इसके निदान का मार्ग पूछा। ऋषि ने गीता के उपदेश की भांति दोनों को देवी कथा सुनाई। पुरुचरित में देवी ने ब्रह्मा के जीवन की रक्षा की थी। मधु एवं कैटभ नामक राक्षस ब्रह्मा की हत्या का प्रयास कर रहे थे। ब्रह्मा भागकर विष्णु के पास चले गए परंतु विष्णु देवी के प्रभाव से योग निद्रा में लीन थे जिससे उन्हें इस घटना का आभास नहीं हो रहा था। देवी ने अपनी शक्ति से विष्णु योग निद्रा को हर लिया जिससे विष्णु जागृत हो गए तथा दोनों राक्षसों का वध किया। ब्रह्मा को देवी प्रार्थना ब्रह्म स्तुति कही जाती है। मध्यम चरित्र में महिषासुर के वध का वर्णन है। महिषासुर ने समस्त देवों को पराजित कर उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव ने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों को विजित करने वाला देवी का आह्वान किया तथा अपने शस्त्र अस्त्र देवी को प्रदान किए। देवी ने इन शस्त्रों से महिषासुर का वध किया। इस वध के पश्चात इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवों ने देवी की स्तुति की, जिसे सक्रादि स्तुति कहा जाता है। उत्तर चरित में पुनः देवता सुम्भ निशुम्भ नामक दो दानव भाइयों के द्वारा प्रताड़ित किए गए। देवी के एक अन्य रूप विष्णु माया से उन्हें अपार शक्ति प्राप्त हो गई थी तथा वे अपराजय थे। देवताओं के आवाहन पर देवी ने सुम्भ निशुम्भ समेत धूर्मलोचन चंडमुंड रक्त बीज तथा अन्य असुरों का वध किया। इस विजय के पश्चात इंद्र अग्नि आदि देवताओं ने देवी की नारायण स्तुति की थी। उत्तर चरित के अंतिम सूक्तों ने देवी के भिन्न कालों में दुष्टों के संहार हेतु अवतार लेने का वचन दिया है। देवी महात्म का यह वर्णन गीता में अर्जुन के द्वारा दिए गए कृष्ण के उपदेश जैसा है। महात्म्य की चारों स्तुतियां ब्रह्मा स्तुति, सक्रादि स्तुति, विष्णु माया स्तुति तथा नारायणी स्तुति में प्राणिक देवी महात्म का पूर्ण वर्णन प्राप्त हो जाता है। यहाँ वह यशोदा की पुत्री एवं विघ्न पर निवास करने वाली हैं। महात्म में देवी ने स्वयं वर्णित किया है कि वह सुम निशुम रक्त दंतांतिक आदि असुरों का वध करेंगी। विप्रचित असुर वंश का वह भक्षण करेंगी। सत्ताक्षी के रूप में वह अकाल के समय जन्म लेंगी तथा शाकंभरी के रूप में समस्त विश्व का पोषण करेंगी। दुर्गा के रूप में वह दुर्गम नामक असुर का वध करेंगी। भीमा के रूप में वह हिमवत के राक्षसों का वध करेंगी तथा भ्रामरी के रूप में वह अरुण नामक राक्षस का संहार करेंगी। पौराणिक दुर्गा भक्ति में दुर्गा हेतु दर्शन का भी विकास हुआ। वह अंतर्यामी पराशक्तियों से युक्त स्वर्ग तथा पृथ्वी को निर्मित करने वाली मानी गई। देवी को आदिशक्ति के नाम से संबोधित किया गया। देवी महात्म में उसे ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का जन्मदाता एवं तीनों विश्वों का नियंता स्वीकार किया गया है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार दुर्गा शिव भक्ति विष्णु की माया है तथा वह निर्गुण और त्रिगुण सतरज तथा तम के जन्म देने वाली है। वह प्रकृति है। वह गुणों से रहित होते हुए भी गुणों का प्रयोग सृष्टि की रचना के लिए करती है। दुर्गा प्रकृति भूमि विश्व की शासक पराशक्तियों वाली ज्ञान वाली विश्वव्यापी ज्ञाति है। देवी पूजा में अनार्य परंपरा का प्रभाव। भारतीय उपमहाद्वीप में देवी पूजा आर्य परंपरा से प्राचीन है। पुरापाषाण काल से ही मातृ देवी का पूजा का वर्णन प्राप्त होने लगता है। वैदिक संस्कृति के स्थापित होने के पश्चात भी देवी पूजा का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ। यद्यपि ऋग्वेद में देवी का स्थान गौण था, परंतु उत्तर वैदिक काल में यह पुनः एक विशिष्ट पूजा हो गई। उत्तर वैदिक काल में ही आर एवं अनार्य देवी परंपरा आपस में मिल गई। देवी परंपरा को अनार्य जनजातियों भी पोषित करती रही, जो समय समय पर आर्य देवी पूजा में आत्मसात होती रही। आधुनिक देवी पूजा सिंधु सभ्यता कालीन देवी पूजा का विकसित स्वरूप है। पार्वती शिव की पत्नी तथा हिमालय की पुत्री मानी गई हैं तथा वह गणेश एवं स्कंद की माता भी हैं। अपने सौम्य स्वरूप में वह माता एवं वात्सल्य का स्वरूप है, जबकि उग्र रूप में वह संहारक है तथा दुर्गम महिष मधु कैटप आदि असुरों का वध करती है। महाभारत में ऐसे उदाहरण पाए जा सकते हैं जहां देवी का अनार्य स्वरूप अधिक प्रभावी है। महाभारत में भीष्म पर्व के दुर्गा स्त्रोत में उसे घने वन का दुर्गम स्थानों एवं देशों का निवासी माना गया है। विराट पर्व में दुर्गा को विंध्यवासिनी कहा गया है। हरिवंश में उसे विंध्यवासिनी तथा पशुओं द्वारा गिरी रहने वाली तथा सबरों पुलिंदों आदि के द्वारा पूजित माना गया है। सबर पुलिंद जैसी जनजातियां अनार्य मानी गई हैं, जिन्हें वैदिक संस्कृति ने धीरे धीरे आत्मसात किया था। अनार्य जनजातियां दुर्गा के उग्र स्वरूप को अधिक पूजती थीं। दुर्गा के काली, कराली, महाकाली, कपाली, कपिला, कृष्ण पिंगल, खड़गधारिणी, विजया, जया, कालामुखी, रणप्रिया स्वरूप में दुर्गा का विकराल स्वरूप ही वर्णित है। बाणभट्ट की कादम्बरी में सबरों का वर्णन देवी को नरबलि अर्पित करने वालों के रूप में हुआ है। हर्षचरित में भी उन्हें देवी को प्रसन्न करने हेतु बलि देने वाला माना गया है। गौड़वाहों में यशोवर्मन को महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते हुए दिखाया गया है। यहाँ मंदिर के भयानक दृश्यों बलि तथा दुर्गा का मयूर से संबंध का भी वर्णन है। कथा सरित सागर के अनुसार विंध्य क्षेत्र में रहने वाली सबर पुलिंद भील आदि जनजातियों में देवी को मानने हेतु नरबलि दी जाती थी। निश्चित रूप से देवी पूजा का उग्र स्वरूप अनार्य परंपरा है, जो आर्यों ने शक्ति के रूप में स्वीकार की थी। पार्वती उमा का वैदिक साहित्य में वर्णन सौम्य रूप से है, परंतु मार्कंडेय वामन जैसे पुराणों में दुर्गा के रूप में पार्वती दुष्टों के संहारक एवं विकराल स्वरूप धारण करने वाली हैं। चंडिका, कौशिक तथा काली कुछ ऐसे ही स्वरूप हैं जो उग्र रूप में विकसित हुए। अवतारवाद एवं शक्तिपीठ। वैष्णव धर्म की तरह ही देवी पूजा में भी अवतारवाद का उदय हुआ। शक्ति पूजा में अवतारवाद का प्रथम विवरण देवी महात्म्यम तथा देवी भागवत पुराण में प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में भी देवी के अवतार का वर्णन है। पार्वती, उमा, विश्वभूजा, मातंगी, भूतमाता, सुभद्रा, दुर्गा, कात्यायनी, चामुंडा, सती आदि उनके प्रमुख अवतार हैं। देवी अवतारों को तीन वर्गों में भी विभाजित किया जाता है, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक वर्ग। अवतारों में सबसे प्रमुख नवदुर्गा अवतार है। भविष्य पुराण में इनका वर्णन प्राप्त होता है। महालक्ष्मी, नंदा, क्षेमाकरी, शिवदूती, महाटुंड, भ्रामरी, सर्वमंगल, रेवती तथा हरिसिद्धि देवी के शिव से संबंधित आठ स्वरूप मंगला, विमला, सर्वमंगला, अलम्बला, कालराती, मरीचिका, चंद्रसया तथा रुद्राणी हैं। देवियों के महाविद्वा देवियां 10 मानी गई हैं। काली, तारा, चिन्मामस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, पागला, धुर्मा, तिपर सुंदरी तथा मातंगी देवियों में योगनियों तांत्रिक संप्रदाय से संबंधित हैं। योगनियों की संख्या 64 मानी गई है। शक्तिपीठों का अर्थ देवी पूजा के स्थानों से है जो विभिन्न कारणों से देश के विभिन्न स्थानों पर उदय हुए थे। इसे शक्तिपीठ कहा गया है। महाभारत के तीर्थयात्रा खंड के वन पर्व में देवी शक्तिपीठों का वर्णन मिलता है। इसमें पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा साकंबर देव क्षेत्र देवी तीर्थ माने गए हैं। मत्स्य पुराण में 108 देवियां तथा उनसे संबंधित स्थानों का वर्णन है। इसमें प्रमुख निम्न है: विशालाक्षी, ललित कायाक्षी, कुमुद, विश्वकाया, गोमती, मंदोत्तर, जयंती, गौरी, कीर्तिमती, मृगदायिनी, मृगावरी, महालक्ष्मी, अरोगा, माहेश्वरी, अमृत, देव माता, यशकरी इत्यादि पर स्थित थे। मातृगढ़ पूजा, मातृगढ़ परंपरा मातृदेवी की पूजा है जो समूहों में होती है। इन गढ़ समूहों को 8, 9 या 16 की संख्या में विभक्त किया गया है, परंतु सप्तमात्रिक पूजा सबसे अधिक प्रचलित है। ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वराही, इंद्राणी तथा चामुंडा सप्तमात्रिक पूजा का समूह है। देवी महात्म्यम में असुरों से लड़ने वाली मातृदेवियों की संख्या 9 है। इनमें सप्तमात्रिक के साथ शिवदूती एवं नरसिंह सम्मिलित है। अन्यत्र गौरी से प्रारंभ होकर इनकी संख्या 16 हो जाती है। पुराणों में मातृ पूजा की उत्पत्ति के विभिन्न कारण दिए गए हैं। एक पौराणिक आख्यान के अनुसार जब शिव ने अपने त्रिभुज से अंधक के हृदय को भेदा तो अंधक के प्रत्येक रक्त बूंद से एक नया दानव पैदा हो गया। इससे शिव अति क्रोधित हुए तथा उनके क्रोध से वैष्णवी, ब्राह्मी, कौमारी, माहेश्वरी, इंद्राणी, चामुंडा तथा वराही का जन्म क्रमशः विष्णु, ब्रह्मा, कुमार, इंद्र, माहेश्वर, यम तथा वराह से हुआ। उन्होंने अंधक के शरीर से निकले प्रत्येक रक्त बूंद को शोषित कर लिया। एक अन्य आख्यान के अनुसार जब शंभु ने रक्त बीज को देवी से युद्ध हेतु भेजा तो देवी ने क्रोध से हुंकार किया, जिससे ब्राह्मी, माहेश्वरी, वैष्णवी, कौमारी, वराही तथा नरसिम्ही का जन्म उनके मुख से हुआ। सप्तम माता चामुंडा का जन्म देवी ने पहले ही शुंभ के सेनापति रुरु को मारने हेतु किया था। वराह पुराण में योगेश्वरी लोभ, माहेश्वरी क्रोध, कौमारी बंधन, ब्राह्मी घमंड, ऐन्द्रिष्या, चामुंडा हरण, वराही तृष्णा तथा वैष्णवी लालच का द्योतक है। मूर्तियों में ब्राह्मी चतुर्भुज तथा चार मुखों वाली हैं तथा हंस उनकी सवारी हैं। वैष्णवी विष्णु से तथा वराही वराह से मिलती जुलती है। कौमारी लाल वर्णा है, चतुर्भुजी है तथा मयूर उनका वाहन है। शक्ति तांत्रिक पद्धति, शक्ति के काम प्रधान रूप के उपासक शक्त कहलाते हैं। शक्ति के तीन प्रधान स्वरूप माने गए हैं: सौम्य रूप, उग्र रूप तथा काम प्रधान रूप। सामान्यतः शक्ति के सौम्य रूप की उपासना होती है। कापाली तथा कालामुख उसके प्रचंड रूप की तथा शक्त उसके काम प्रधान रूप की उपासना करते हैं। शक्त मत के अनुसार ईश्वर स्त्री का रूप है, इसलिए शक्ति की नारी के रूप में उपासना करते हैं। शक्त मतानुसार समस्त सृष्टि नारी से सृजित है, इसलिए शक्ति को जगत माता कहा गया है। इसमें समस्त देवताओं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश समावेश है। शाक्त अनुयायी शक्ति को आनंद, भैरवी, त्रिपुरसुंदरी, ललिता, मध्यतारिका आदि कहते हैं। वास्तव में शाक्त प्रत्येक नारी को शक्ति रूप मानता है। उनके अनुसार शिव तत्व तथा शक्ति तत्व के समागम से सामरस्य उत्पन्न होता है। इसी कारण से वे अपनी तांत्रिक क्रियाओं में भौतिक एवं मानसिक दोनों आधार पर स्त्री पुरुष समागम पर बल देते हैं। तंत्र वास्तव में कल्प सूत्र का एक अंग है। कल्प सूत्र में आगम, चामल, जामर तथा तंत्र का समन्वय है। तंत्रों की संख्या 64 मानी गई है। तंत्र साहित्य में महानिर्माण तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें संपूर्ण तंत्र विधान वर्णित है। तंत्र साहित्य पर आधारित होने के कारण शक्त मत को तांत्रिक मत भी कहा जाता है। शक्त अपनी साधना में निम्नलिखित बल देते हैं: यंत्र, रश्मय आरेख, मंत्र, रश्मय शब्द, बीज, सूत्र, मुद्रा, हाथ तथा अंगुलियों की विशिष्ट स्थिति तथा गति। न्यास, इष्ट देवी को शरीर के विशिष्ट स्थानों पर धारण करना तथा सीधे हाथ की हथेली तथा उंगलियों से स्पर्श करना उपरोक्त रहस्यमय क्रियाओं को आचार कहा जाता है, जिसका उद्देश्य सामंजस्य प्राप्त करना है। शाक्त मत में आध्यात्मिक प्राप्ति के संबंध में 3 भाव अथवा मार्ग तथा 7 आचार स्थापित किए गए हैं। ये भाव निम्न हैं: पाशु भाव, प्राकृतिक मनुष्य आत्मा जो या जिसमें मनुष्य पशुओं की तरह प्राकृतिक नियमों का पालन करता है, अर्थात समाज की पारंपरिक नैतिक मान्यताओं का पालन करता है। वीर भाव, निर्भीक मनुष्य आत्मा जो या जिसमें मनुष्य समाज की पारंपरिक नैतिक मान्यताओं का उल्लंघन करके अन्य क्रियाएं करता है। दिव्य भाव, शुद्ध दैवीय आत्मा जो वीर भाव से ऊंचे उठकर आध्यात्मिक उपलब्धि की पराकाष्ठा को पहुंचता है। शाक्त मत वीर भाव से ही प्रारंभ होता है। आचार का वर्णन कौल ज्ञान निर्णय नामक ग्रंथ में वर्णित है। यह 11वीं शताब्दी में रचित की गई थी। ये निम्न है: वेदाचारक महाराष्ट्र में, वैष्णवाचार्य, दक्षिणाचार्य, सेवाचार्य, वीराचार, वामाचार, सिद्धांताचार, कौलाचार, बौद्धाचार। भाव या मार्गो के अंतर्गत विभिन्न आचार निम्न है: पशु भाव में 4 आचार वेदाचार, वैश्वाचार, सेवाचार और दक्षिणाचार है। वीर भाव में 2 आचार वामाचार तथा सिद्धांताचार है। दिव्य भाव में 1 आचार कोलाचार है। वीर भाव में व्यक्ति सभी प्रकार के सामाजिक मान्यताओं तथा दया, राग, भय इत्यादि को त्याग कर अपनी रहस्यमय क्रियाओं को रात के समय करते हैं तथा पंचम कर का पालन करते हैं। वामाचार इन क्रियाओं को अव्यक्त रूप से करते हैं। सिद्धांताचार इन क्रियाओं को खुलकर करते हैं। गुलावर तंत्र पंचम कर से संबंधित दार्शनिक तत्व की व्याख्या करता है तथा कहता है कि उपयुक्त के सेवन से शरीर तथा मस्तिष्क आध्यात्मिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ हो जाता है। दिव्य भाव में कोल का अर्थ है कुल अथवा शक्ति का उपासक। सभी प्रकार के सामाजिक प्रतिबंधों से मुक्त, भौतिक तथा मानसिक आवश्यकताओं, पूर्वाग्रह तथा भावनाओं से मुक्त कोल सभी आचारों में भ्रमण करता है। हृदय से वह शाक्त है। बाह्य आचार में शैव तथा सामाजिक रूप से वैष्णव है। कौल अद्वैतवादी साधक है। कौल की शाखाएं निम्न है: पूर्व कौल, ये अपनी क्रियाओं को संकेतात्मक रूप में करते हैं। उत्तर कौल, ये क्रियाओं को वास्तविक रूप में करते हैं। समीन, ये यंत्र तथा वास्तविक दोनों माध्यम से क्रियाएं नहीं करते हैं तथा अपनी साधना श्री चक्र के द्वारा करते हैं। श्री चक्र भुजपत्र रेशमी वस्त्र अथवा स्वर्ण पात्र पर बना 9 मंडल है, जिसमें मध्य में एक चित्र होता है। शक्ति की कुछ महत्वपूर्ण प्रतिमाएं महिषासुरमर्दिनी सामान्यतः 8-10 हाथ युक्त होती हैं तथा भारत के विभिन्न स्थानों से प्राप्त होती हैं। 18 हाथ युक्त महिषासुरमर्दिनी मध्य में तथा 16 हाथ युक्त 8 अन्य प्रतिमाएं उसके आसपास उत्तरी बंगाल के दीनाजपुर से प्राप्त हैं। दीनाजपुर से प्राप्त एक अन्य दुर्गा प्रतिमा 32 हाथों वाली है। इसके चारों ओर गणपति, सूर्य, शिव, विष्णु तथा ब्रह्मा की प्रतिमाएं हैं। देवी असुरों का संहार करती हैं। खड़ी स्थिति में प्राप्त सबसे प्रसिद्ध मूर्ति एलोरा में उत्कीर्ण है। यह 4 हाथ युक्त है, जिसमें निचले सीधे हाथ में कमल, ऊपरी सीधे हाथ में शिवलिंग, ऊपरी उल्टे हाथ में गणपति तथा निचले उल्टे हाथ में कमंडल है। सिंधु सभ्यता की असंख्य मारुति देवी की मूर्तियां माता के विभिन्न स्वरूपों को इंगित करती हैं। उत्तर हड़प्पा कालीन लगभग 1200 ईस्वी के पूना के इनाम गांव से प्राप्त देवी प्रतिमाएं इसके प्रचलन का प्रमाण है। चंपापरण के लोरिया नंदनगढ़ से एक स्वर्ण पट्टी पर एक स्त्री का अंकन प्राप्त हुआ है। ब्लैक ने इसे 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का तथा पृथ्वी का स्वरूप माना है। ऐसी एक प्रतिमा पिपहरवा स्तूप से प्राप्त है, जो मौर्य कालीन मानी जाती है। लोरिया नंदनगढ़ पिपहरवा प्रकार की प्रतिमाएं रोपड़, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, मीरा, कारा, कौशाम्बी, सुमी, राजघाट, मथुरा, सकिशा, वैशाली तथा पटना से भी प्राप्त होती हैं। यक्ष तथा यक्षिणी रूप में अलकनंदा तथा सुदर्शन यक्षिणियों का वर्णन भारहूस से प्राप्त है। इनके साथ बौद्ध देवो, शिरमा देवता तथा चुलकोल देवता भी अंकित हैं। एलोरा में सप्तमार्तिक मुद्रा में प्राप्त हुई हैं। आसन्न मूर्ति में उमा महेश्वर की मूर्ति प्रसिद्ध है। इसमें उमा शिव की गोद में बैठी हुई हैं। शैव धर्म में शक्ति पूजा का सबसे अधिक प्रभाव शैव संप्रदाय पर है। उत्तर वैदिक काल की शक्ति पूजा शैव संप्रदाय से ही उत्पन्न दिखती है। शैव एवं शाक्त दोनों परंपरा में शिव एवं शक्ति को एक ही माना गया है। शिव का अर्ध नारीश्वर स्वरूप शक्ति एवं शिव का सम्मिलित स्वरूप है। वीर शैव आंदोलन में शिव एवं शक्ति को एक मानते हुए शक्ति विशिष्ट अद्वैतवाद की व्याख्या की गई है। कश्मीर के त्रिक शैव दर्शन में भी माया को शिव की शक्ति कहा गया है तथा यह शक्ति 5 भागों में विभाजित की गई है: चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया। इन्हें शिव की शक्ति माना गया है। अर्धनारीश्वर की अभिव्यक्ति में एक शरीर के रूप में शिव एवं पार्वती सृष्टि की उत्पत्ति को दर्शाते हैं। इसका प्रथम स्पष्ट वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म में शक्ति पूजा। वैष्णव धर्म में शक्ति का प्रथम वर्णन श्री लक्ष्मी के रूप में प्राप्त होता है। विष्णु प्रिया की अवधारणा 10 महाविद्या के कमला स्वरूप तथा शिवा के पत्नी के रूप में व्याख्यायित है। सरस्वती ने भी वैष्णव धर्म में शक्ति की पूजा को प्रोत्साहित किया। वैष्णव धर्म में भूदेवी या महादेवी को विष्णु की पत्नी माना गया है। भूदेवी या महादेवी का संबंध मातृदेवी से जोड़ा जा सकता है, जो शक्ति पूजा की प्राचीनतम अवधारणा है। नारायणी को नारायण की शक्ति माना गया है। गौतमी तंत्र नामक ग्रंथ में कला नामक शक्तियों का वर्णन प्राप्त होता है। कृष्ण भक्ति ने शक्ति पूजाओं को एक नया स्वरूप प्रदान किया। महाभारत के दुर्गा स्त्रोत में देवी को कृष्ण की बहन माना गया है, जो यशोदा के गर्भ में नंद वंश में जन्मी थी। मत्स्य पुराण एवं स्कंद पुराण में इनकी तुलना पार्वती से की गई है। वैष्णव धर्म के गोपी प्रकरण का संबंध भी शक्ति से संबंधित है। परियालवर की पुत्री आंडाल या कोकई स्वयं को कृष्ण की गोपी मानती है। निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य के द्वारा विकसित किए गए राधा संप्रदाय भी शक्ति परंपरा से हैं। वल्लभ के शिष्य तो कभी कभी स्त्री वेशभूषा भी धारण करते थे। पूर्व मध्य काल में रचित लक्ष्मी तंत्र नामक ग्रंथ में शक्ति उपासना को पांचरात धर्म का एक अंग माना गया है। बंगाल में शक्ति उपासना के आधार पर वैष्णव धर्म में साझी संप्रदाय का उदय हुआ। उसमें शिव एवं शक्ति की भांति कृष्ण एवं राधा को एक मानकर आराधना की जाती थी। संभवतः यह बौद्ध तांत्रिक विचारधारा से जन्मा था। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न चंडीदास सहजी संप्रदाय के मानने वाले थे। उनके श्री कृष्ण कीर्तन नामक ग्रंथ में संप्रदाय का वर्णन प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म में शक्ति पूजा। बौद्ध धर्म में शक्ति की अवधारणा ब्राह्मण धर्म से स्वीकार की गई है। बौद्ध देवी श्री लक्ष्मी ब्राह्मण धर्म की लक्ष्मी तथा सरस्वती का संयोग है। उसे बुद्धि शुभ की देवी माना गया है। चुल्लवक वंश में वीर लक्ष्मी नामक देवी का वर्णन है, जो वीरों को सफलता एवं ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। महायान संप्रदाय में देवी पूजा का प्रचलन बढ़ गया। इसमें देवी देवताओं, उनसे संबंधित रंगों, अस्त्र शस्त्र आदि सबका वर्णन हुआ। प्रज्ञा को भी देवी स्वरूप ही स्वीकार किया गया है तथा उनकी तुलना भगवती से की गई है। बौद्ध तांत्रिक संप्रदाय में प्रज्ञा एक सुंदर कन्या के रूप में वर्णित है, जबकि अन्य बौद्ध संप्रदायों में प्रज्ञा स्त्री के अंगों से संबंधित की गई है तथा कमल के स्वरूप में वर्णित की गई है। शक्ति के प्रभाव के कारण बर्जियान में आदि बुद्ध की पत्नियों को प्रज्ञा पारमिता का नाम दिया गया है। ध्यानी बुद्धों की भी पत्नियां शक्ति के रूप में मानी गई है। बौद्ध धर्म में तारा देवी का वही स्थान जो हिंदू धर्म में दुर्गा का है। उसे अवलोकितेश्वर की पत्नी, मातृ देवी तथा अनंत ऊर्जा का स्रोत माना गया है। बौद्ध धर्म में तारा को 108 स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। आर्य मंजुश्री मूल कल्प में तारा को लोचन, श्वेता, पंडारवाशिनी, सुतारा आदि रूप में वर्णित किया गया है। सर्वजन मित्र ने तारा की प्रशंसा सारंग धर्म स्त्रोत की रचना की। सम्मोहन तंत्र के अनुसार चीन देश के मेरु पर्वत के चोल नामक स्थान पर नील सरस्वती या उग्र तारा का जन्म हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में सर्प देवी जांगुली नामक तारा का वर्णन प्राप्त होता है। यह जैन धर्म की पद्मावती के समकक्ष है। परंपरा के अनुसार जांगुली की प्राचीनता बुद्ध के काल से है तथा इसकी पूजा का गुप्त ज्ञान स्वयं बुद्ध ने आनंद को दिया था। महामाया विजयवाहिनी नामक तारा को उग्रता की देवी माना गया है। तारा का वर्णन हरे, सफेद, पीले, नीले तथा लाल रंगों के आधार पर ही हुआ है। हीरानंद शास्त्री तारा की उत्पत्ति ब्राह्मण धर्म से नहीं मानते हैं। उनके अनुसार तारा की आराधना सर्वप्रथम लद्दाख में प्रारंभ हुई तथा नेपाल के रास्ते भारत पहुंची। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम चीन के ताओ धर्म में मानते हैं। जैन शक्ति पद्धति। जैन धर्म में देवी पूजा उत्तराध्ययन सूत्र आचार दिनकर आदि ग्रंथों में प्राप्त होती है। आचार दिनकर में जैन देवियों के तीन वर्गों का विवरण है, प्रसाद देवी, संप्रदाय देवी, कुल देवी। जैन धर्म में शासन देवताओं के रूप में देवियों जैसे चक्रेश्वरी आदि वर्णित है। कंकाली, काली, महाकाली, चामुंडा, ज्वालामुखी, कामाख्या, कपालनी, भद्रकाली, दुर्गा, ललिता, गौरी, सुमंगला, रोहिणी, शुल्कता, त्रिपुरा, कुरुकुत्तल, चंद्रावती, यमघंटा आदि देवियां जैन धर्म के कुल देवी के वर्ग में आती हैं। हेमचंद्र ने अभिज्ञान चिंतामणि में 16 या विद्या देवी, ब्राह्मणी, विद्या, गुरुदेवी, माहेश्वरी समेत 8 माताओं, श्री लक्ष्मी आदि का वर्णन किया है। जैन धर्म में 64 योनियों तथा यक्षिणी पूजा भी पूर्ण रूप से प्रचलित थी। शाक्त साहित्य एवं अभिलेख। शाक्त धर्म का प्रथम अभिलेखनी साक्ष्य सिंधु सभ्यता कालीन मुद्राओं से प्राप्त होता है, लेकिन लेखन का ज्ञान न होने के कारण इसके बारे में कुछ ज्ञात नहीं है। ऋग्वेद में देवी पूजा का वर्णन है, परंतु वह गौर स्वरूप में है। उत्तर वैदिक साहित्य में देवी पूजा का स्थान अति महत्वपूर्ण है। कालिदेश के कुमार संभव में भी कार्तिकेय या कुमार के जन्म का विवरण है। कालिदास की एक अन्य रचना विक्रमोवर्षीयम में लक्ष्मी एवं सरस्वती को एक दूसरे का शत्रु बताया गया है। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित है कि धनांजलि सरस्वती के मंदिर में नित्य ज्ञान हेतु भ्रमण करते थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित में साबरो देवी के उग्र स्वरूप की भक्ति का वर्णन किया है। वाक्पति ने गोडवाहों में भी साबरो के विंध्यवासिनी की पूजा का उल्लेख किया है तथा उनके द्वारा दी जाने वाली मानव बलि का उल्लेख किया है। संध्याकर नंदिनी ने रामचरित में उमा के उत्सव का वर्णन किया है। जिमंत वाहन ने अपने काल विवेक में शक्ति पीठों के विभस्त कृत्यों का उल्लेख किया है। कश्मीर के आनंद वर्धन की देवी शुक्त में मातृदेवी की पूजा का उल्लेख हुआ है। शंकर के सौंदर्य लहरी में भी देवी पूजा का उल्लेख है। गुप्तकालीन 423 ईस्वी के गंगधर अभिलेख में डाकनी के मंदिरों का वर्णन है। यशोवर्मन के मंदसौर अभिलेख में छित आवर्जन का वर्णन है, जिसे उमा एवं पार्वती से जोड़ा गया है। खौ ताम्रपत्र अभिलेख में पिष्टपुरी के मंदिर निर्माण तथा उसके रख रखाव के हेतु दान का वर्णन। दक्षिण में पल्लव अभिलेख में शक्ति का वर्णन है। शिल प्राप्ति क्रम में मालवकिंगागई का वर्णन है। महाबलीपुरम महिषासुरमर्दिनी गुफा तथा शिगोवरम के रंगनाथ गुफा में महिषासुरमर्दिनी दुर्गा को अनंतशायी विष्णु के साथ वर्णित किया गया है। विजयालय तथा आदित्य चोल के काल में भी शक्ति पूजा विकसित थी। तिरुवाल नडंग पत्र के अनुसार राजेंद्र चोल ने निशुंभ वादिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था। तमिल दुर्गा मंदिरों जैसे महाबलीपुरम के आदि वराह गुफा मंदिर तथा काचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिरों में दुर्गा एवं सिंह के साथ हिरण का भी अंकन है। तमिल शक्ति पूजा में लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का भी उल्लेख है। शिला पादिपकरम में वर्णित कंगगई पूजा का आधार भी शक्ति पूजा ही है।